पकड़ा गया।
यूहन्ना की इंजील 8 पहली आयत से लेकर 11 तक। एक दिन ईसा मसीह पांव फटते ही बैतुल मुकद्दस में आ पहुंचा। बैतुल मुकद्दस क्या था? बैतुल मुकद्दस यरूशलम में वो जगह थी जहां यहूदी अपनी कुर्बानियां चढ़ाते थे। कहीं और चढ़ाने की इजाजत नहीं थी। वहां वो कुर्बानियां चढ़ाने पूरी दुनिया से आते थे। उस जमाने में ये शानदार इमारत दुनिया के अजूबों में गिनी जाती थी। आज उस जगह पर अल अक्सा की सुनहरी गुंबद धूप में चमकती दमकती है। अल मसीह का वहां आने का क्या मकसद था? क्या वो कुर्बानियां चढ़ाना चाहता था या मोजज़े दिखाने आया था? नहीं, वो बैठकर लोगों को तालीम देने लगा। उस जमाने में उस्ताद बैठता था जबकि सुनने वाले खड़े रहते थे। ईसा मसीह लोगों को तालीम क्यों देने लगा? लोग खोई हुई भेड़ों जैसे थे जो भूले भटके फिर रहे थे। ये देखकर उसे उन पर तरस आता था। वो जो सच्चा चरवाहा था, वो उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता था। मामूल के मुताबिक ज्यों ही उसने अपना मुंह खोला, लोग दौड़कर उसके गिर्द जमा हुए और बड़े मजे से सुनने लगे। ईसा मसीह स्कूल का आम टीचर नहीं था। उसकी बातें सुन सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। वो रटी रटाई बातें नहीं बताता था। वो बड़े इख्तियार के साथ बात करता था, क्योंकि उसके फरमान सीधे खुदा के फरमान थे। आम उस्ताद तालाब का बासी पानी निकालकर अपने चेलों में बांट देता है। खुदावंद ईसा फर्क था। वो कलाम का आसमानी बीज बोकर आसमानी चश्मे के उबलते पानी से उसकी सिंचाई करता था। उसके कलाम से रूहानी जिंदगी उगकर फलती फूलती है। ये कलाम सीधा दिल में जा बसता है, जहां वो सुनने वाले की पूरी जिंदगी उलट पुलट कर डालता है। अचानक खलबली मच गई। शरीयत के कुचालम एक औरत घसीट कर उनके बीच में आ धमके। इजाजत मांगे बगैर उन्होंने औरत को उस्ताद को पेश करके कहा, उस्ताद, इस औरत को जिना करते वक्त पकड़ा गया है। बेचारी औरत, वो थरथराती हुई उनके बीच में खड़ी रही। वो जानती थी कि जिना की सजा मौत है। लेकिन रुको रुको, एक ही इंसान से जिना कब से होती है? वो आदमी कहाँ था जिसने जिना की थी? क्या सिर्फ औरत को पकड़ा गया था? शरीयत के मुताबिक मर्द और औरत दोनों ही सजाए मौत लायक हैं। देखिए तौरात इस्तिस्ना की किताब 22 आयत 22। और ये आलम, ये औरत को यहाँ क्यों लाए? क्या ऐसे मामलों के लिए यहूदी अदालतें नहीं थीं? जरूर, दाल में कुछ काला था। हकीकत ये है, औरत का गुनाह सिर्फ बहाना था। असली मकसद एक और था, ये के उस्ताद को पकड़ा जाए। वो उसे किस तरह फंसाना चाहते थे? उन्होंने कहा, मूसा ने शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसे लोगों को संगसार करना है। आप क्या कहते हैं? संगसार करने का क्या तरीकेकार था? मुजरिम को जमीन पर पटख कर पत्थरों से मार डाला जाता था, और लाजिम था कि गुनाह के गवाह पहले पत्थर मारे। देखिए तो रेत इस्तिस्ना की किताब 17 आयत 7। ये आलम बहुत चालाक थे। वो तो जानते थे कि ईसा मसीह नहायत रहम दिल है। वो पहले से नाराज थे कि वो गुनाहगारों से मिला करता है, हालांकि उनके गुनाह उसे बहुत तकलीफ देते थे। खुद तो वो पूरी तरह पाक था, इसलिए हर गुनाह उसे कांटे की तरह चुभता था। लेकिन दुनिया में आने का यही मकसद था कि गुनाहगारों को नजात दे। जिस तरह लिखा है, अल्लाह ने अपने फर्जंद को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि वो दुनिया को मुजरिम ठहराए, बल्कि इसलिए कि वो उसे नजात दे। यूहन्ना की इंजील 3 आयत 17। आलिमों का अंदाजा ये था, उस्ताद इस गुनाहगार औरत को मुआफ करेगा, तब हम उसे मुजरिम ठहरा सकेंगे। हम कह सकेंगे कि ये कुफर बकरा है, ये कहता है कि शरीयत की बातें नहीं माननी है। एक और बात भी है, वो तो जानते थे कि अगर उस्ताद फरमाए कि औरत को सजा दो तो भी फंस जाएगा। रोमियों का मुल्क पर कब्जा था और वही सजाए मौत देते थे। अगर उस्ताद औरत को सजाए मौत लायक ठहराए तो रोमी उसे पकड़ेंगे। अब ध्यान दें कि ईसा मसीह ने क्या किया। जिसे अल्लाह ही इख्तियार होता है, वो हर मौके पर बात नहीं करता, कभी कभी उसे खामोश भी रहना पड़ता है। इस मौके पर ईसा मसीह खामोश रहा। खामोश रहना भी एक किस्म का जवाब होता है। साथ साथ उसने क्या किया? जो उसने किया वो कुछ अजीब सा लग रहा था। वो झुक कर अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगा। हम नहीं जानते कि उसने क्या लिखा, लेकिन एक बात साफ है, वो वही जवाब देने को तैयार नहीं था जो आलिम उससे मांग रहे थे। आलिम चौंक उठे, इससे काम नहीं बनेगा, आखिर उसे कोई जवाब तो देना ही है। वो डटकर सवाल का जवाब मांगते रहे। तब ईसा मसीह खड़ा होकर बोला, तुम में से जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। वो फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। कितना अजीब मंजर। ये आलिम तो लोगों को पकड़ने में बहुत माहिर थे। पहले उन्होंने औरत को पकड़ लिया था और अब वो ईसा मसीह को भी पकड़ने पर तुले हुए थे। लेकिन यहां इसके उलट हुआ, उन्हीं को पकड़ा गया। पहले सबकी आंखें औरत और उसके गुनाह पर लगी थी, अब अचानक हर एक को उसके अपने गुनाह महसूस हुए। पकड़ने वालों को खुद पकड़ा गया। देखो, आलिमों की सोच हम सब की सोच है। हम सब पकड़ने वाले होते हैं। किसी को पकड़ा जाए, चाहे उसकी गलती मामूली सी क्यों ना हो, तो हम एकदम बड़ा मजा उठाते हैं। सब के सब उसे मोटी मोटी गालियां देते हैं। मगर खुदावंद ईसा के हजूर एक बुनियादी बात जाहिर हो जाती है, हम सब को खुदा से पकड़ा गया है। गुनाह में हम सब बराबर होते हैं। हम सब के सब इस लायक नहीं कि खुदा के हजूर आए। अब धीरे धीरे आलम एक एक करके वहां से खिसक गए, पहले बुजुर्ग फिर बाकी सब। औरत को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। आलिमों की चाल जवाब दे गई थी, अब जो उस्ताद को पकड़ना चाहते थे उन्हीं को पकड़ा गया, अपने गुनाहों में पकड़े गए। इस कलाम की तेज रोशनी में वो अपने गुनाहों को महसूस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनके गुनाह खुलेआम हो जाएं, वो भाग जाते हैं। और औरत, उसका क्या हुआ? ईसा मसीह ने खड़े होकर कहा, ऐ औरत, वो सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर फतवा नहीं लगाया? औरत ने जवाब दिया, नहीं खुदावंद। उस्ताद ने कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, जा आइंदा गुनाह ना करना। देखो, आलिम और औरत गुनाह में बराबर थे, ये भी गुनाहगार थी और वो भी, लेकिन एक फर्क था। फर्क क्या था? आलिम अपने गुनाहों में उलझे रहे जबकि औरत को माफी मिली। आलिम अपने गुनाहों को तस्लीम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो माफी मिले बगैर भाग गए। औरत को माफी मिली और उसका दिल हल्का हुआ। क्या आपके ख्याल में औरत इसके बाद दोबारा जिना करने में जुट गई? कलाम हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझे यकीन है कि उस्ताद के कलाम से वो तब्दील हुई और सही रास्ते पर आ गई। मुझे क्यों यकीन है? मुझे इसलिए यकीन है कि वो उसे खुदावंद कहती है। ईसा मसीह उसका खुदावंद बन गया, उसका मालिक। अब से उसकी जिंदगी उसके हाथ में थी, उसकी हकूमत के तहत थी। اس حکومت کے تحت وہ پہلی بار حقیقی معنوں میں آزاد تھی۔ اس آزادی کی خوشی کے مارے اسے اپنی پرانی زندگی سے گھن آئی اور وہ صحیح راہ پر آئی۔ جو خداوند سے تبدیل ہو جاتا ہے اسے اپنی پرانی زندگی سے گھن آتی ہے اور وہ راہ مستقیم پر آ جاتا ہے۔ اس سے انجیل اور شریعت میں فرق بھی پتہ چلتا ہے۔ خدا نے شریعت نازل کی تاکہ انسان کو ڈھانچہ ملے، ایک قانون جس سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات محفوظ رہیں۔ شریعت کا ایک ضروری حصہ سزا بھی ہے۔ شریعت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اے انسان، تجھ سے گناہ ہوا ہے، اور شریعت ہی ہمیں سزا دیتی ہے جب ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ شریعت انسان کو پکڑ کر سزا دیتی ہے، جبکہ عیسیٰ مسیح اسے معافی دے کر گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی انجیل کی خوشخبری ہے۔ مسیح نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کے غلام رہیں، وہ ہمیں اس غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جب ہمیں یہ آزادی حاصل ہو تو ہمیں نہ صرف معافی ملتی ہے بلکہ ہم گناہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم خداوند کے دامن کو تھامے ہوئے دل کی گہرائیوں سے صحیح راستے پر رہنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم عالموں کی طرح خداوند کے حضور سے بھاگ جائیں گے، یا عورت کی طرح اپنے گناہوں کو مان کر معافی پائیں گے؟ کیا ہم گناہ کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے، یا انجیل کی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ یوحنا کی انجیل 8 پہلی آیت سے لے کر 11 تک۔ عیسیٰ خود زیتون کے پہاڑ پر چلا گیا۔ اگلے دن پاؤ پھٹتے وقت وہ دوبارہ بیت المقدس میں آیا۔ وہاں سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اس دوران شریعت کے علماء اور فریسی ایک عورت کو لے کر آئے جسے زنا کرتے وقت پکڑا گیا تھا۔ اسے بیچ میں کھڑا کر کے انہوں نے عیسیٰ سے کہا، استاد، اس عورت کو زنا کرتے وقت پکڑا گیا ہے، موسیٰ نے شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سنگسار کرنا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سوال سے وہ اسے پھنسانا چاہتے تھے تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ ان کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن عیسیٰ جھک گیا اور اپنی انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے جواب کا تقاضا کرتے رہے تو وہ کھڑا ہو کر ان سے مخاطب ہوا، تم میں سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر مارے۔ پھر وہ دوبارہ جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ یہ جواب سن کر الزام لگانے والے یکے بعد دیگرے وہاں سے کھسک گئے، پہلے بزرگ، پھر باقی سب۔ آخر کار عیسیٰ اور درمیان میں کھڑی وہ عورت اکیلے رہ گئی۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے عورت، وہ سب کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر فتویٰ نہیں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، نہیں خداوند۔ عیسیٰ نے کہا، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، جا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔